Om Shivaya Namah. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Prashnopanishad, presented by Vishwamatmananda Guruji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Bhadram no pivataya manah Sachidananda Bhagavan Tattva Jigyasu Sajjano Matao Behno. हम लोग प्रज्ञानम ब्रह्म महावाक्य के ऊपर विचार करेंगे. देखिए, देखा ऐसा जाता है और महापुरुष भी कहते हैं कि इस संसार में या इस मनुष्य जन्म में तीन प्रकार के लाभ बताए गए. प्रत्यक्ष दृष्ट लाभ और अदृष्ट लाभ. प्रत्यक्ष दृष्ट जो लाभ है वो तो हम लोग ले ही रहे हैं. और उसमें किसी को कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। सुबह से शाम तक जो कार्य करते हैं उससे जो मिलता है उसको प्रत्यक्ष लाभ कहते हैं। प्रत्यक्ष यानी कि इंद्रियों के द्वारा दिखने में आने वाला और इंद्रियों के द्वारा जो भोगा जाने वाला जो लाभ है उन्हीं को प्रत्यक्ष लाभ बोलते हैं। और ये लाभ संसार के सभी प्राणी लेते हैं, न केवल मनुष्य अपितु एक स्तंभ से लेकर मनुष्य पर्यंत जितने भी भूत है वो सब ये प्रत्यक्ष लाभ के पीछे लगे हुए हैं। किंतु कोई ये नहीं देखता है कि प्रत्यक्ष लाभ कितनी देर तक रहता है। अब रहे या न रहे किंतु सभी प्राणी प्रत्यक्ष लाभ लेने में लगे हुए हैं। तो ये हुआ प्रत्यक्ष लाभ, इसको इहलौकिक लाभ भी बोलते हैं। और इहलोक का लाभ लेते 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 अनुभव से, आचार्यों के कथन से, शास्त्र से जब ये पता चला कि यावत जीवन भी ये लाभ रहने वाला नहीं है, क्षणभंगुर है, दुख मिश्रित है, अल्पायु है, जब पता चल जाता है तो हमारा ध्यान स्थायी लाभ की ओर जाता है और मन में आवश्यकता महसूस होने लगती है कि ऐसा भी कोई लाभ मिले जो नष्ट होने वाला न हो। प्रत्यक्ष दृष्ट लाभ प्रत्यक्ष से ही दिखता है कि ये नष्ट हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अनित्य म सुखम लोक मिमम प्राप्य भजस्व माम, कहा कि इमम लोकम अनित्यम और असुखम, यह लौकिक लाभ में ये दो दोष पड़े हुए हैं। एक तो ये अनित्य है और असुखम है। हम लोग खुद देखते हैं कि इहलौकिक जो लाभ है वो स्थायी नहीं है, अनित्य है, यानी अभी है वर्तमान काल में, किंतु भविष्य में कहने से आप यही कह दीजिए कि एक क्षण के बाद इहलौकिक लाभ रहेगा कि नहीं रहेगा वो कोई बता नहीं सकता है। और भगवान शंकराचार्य जी ने प्रश्नोत्तरी मणिरत्न माला में तो कहा कि विद्युत चलम किम धन यौवनायु। गुरु और शिष्य के प्रश्नोत्तर के रूप में प्रसिद्ध है, जिसमें 100 प्रश्न है, बहुत ही सुंदर है वो। शिष्य ने पूछा कि गुरुजी विद्युत चलम किम, विद्युत के समान चलायमान कौन है? विद्युत बिजली जो आकाश में चमकती है वो कितने देर चमकती है बताओ? 10 निमेश मात्र और फिर अंधेरा। संसार में सबसे जो चलायमान यदि है, चंचल है, तो वो बिजली है। आकाश में जो चमकती है वो बिजली, एक क्षण के लिए भी वो नहीं रहती है। तो ये विद्युत के समान चलायमान कौन है, ऐसा प्रश्न शिष्य ने किया। तो गुरु ने उत्तर दिया, धन, यौवन और आयु। ये आचार्य जी ने ठीक कहा है कि गलत कहा है बताओ? हम लोगों का क्या अनुभव है? धन देखिए, ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। आज है तो कल, कल क्या, एक क्षण के बाद ही चला जाएगा। युवावस्था को आप देख लीजिए, देखते देखते ही मुंड श्वेत हो जाता है, दांत की इतनी सुंदर पंक्तियां जो है वो न जाने कब निकल जाती है, खिंचवाने जाना पड़ता है दंत पंक्ति को। और आप लोग देखते हैं, बैठ तो पाते ही नहीं है नीचे। युवावस्था कब चली गई, आयु कब समाप्त हो गया, पता ही नहीं चलता। ये चलायमान है। अब ज्यादा नहीं कहना है, आप ये समझ लीजिए कि इहलोक का जो लाभ है वो बिल्कुल विद्युत के समान चलायमान है। अब आप चाहते हैं कि नहीं कि स्थायी लाभ मिले बताओ? कब तक ये अस्थायी लाभ के पीछे हम लगे रहेंगे? संसार में सभी प्राणी अस्थायी लाभ, क्षणभंगुर लाभ, इहलौकिक लाभ जो भी कहिए, उसी को प्राप्त करने के लिए रात दिन प्रयत्न करते हैं। और हमारे शास्त्रों ने, आचार्यों ने, हमारा वैदिक धर्म भी यही कहता है कि मनुष्य को इहलौकिक लाभ से ऊपर उठ करके पारलौकिक लाभ की ओर दृष्टि करनी चाहिए। पारलौकिक लाभ यानी ये मनुष्य लोक से श्रेष्ठ जो लोक है, जिसको देवलोक कहा। आप लोग ने ये तो सुना ही होगा कि कर्म का जो फल है वो 3 प्रकार का है, क्योंकि कर्म भी 3 प्रकार के मनुष्य करता है, इष्ट कर्म, अनिष्ट कर्म और मिश्र कर्म। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम्, ये 3 कर्म के फल बताए गए। इष्ट कर्म का फल है देवादि भाव की प्राप्ति, अनिष्ट कर्म का फल है तिर्यगादि भाव की प्राप्ति, और मिश्र कर्म का फल मनुष्य लोक की प्राप्ति। अब हम लोग मनुष्य शरीर धारण किए हुए हैं, इसलिए मिश्र कर्म का फल भोग रहे है। मिश्र कर्म में आप ये अनुभव करते ही है कि जितना सुख है उतना ही साथ साथ में दुख भी है। अब चाहते हैं कि शुद्ध सुख मिले, दुख मिश्रित नहीं, तो मनुष्य से तुरंत जो सुख है, पद है या पारलौकिक लाभ है वो परलोक का है, देव भाव है, और वो इसलिए कि मनुष्य को कर्म का अभ्यास है, कर्म किए बिना मनुष्य रह नहीं सकता है। इसलिए वेद ने भी यही परिपाटी का अनुसरण करते हुए मनुष्य को और ज्यादा कुछ करवाना न पड़े इसलिए कहा कि तुम वेद विहित कर्म करोगे, कर्म तो कर ही रहे हो किंतु निषिद्ध का परित्याग और वेद विहित कर्म करोगे तो तुमको यह लोक का तो लाभ होगा ही, मृत्यु के अनंतर तुम इससे श्रेष्ठ देव भाव को भी प्राप्त करोगे। जो देव भाव, देवलोक, ये मनुष्य लोक से ज्यादा सुखदायी है और उनका जो भोग का समय भी ज्यादा है, किंतु वेद जो है साथ साथ में ये चेतावनी भी देता है कि पारलौकिक लाभ इससे ज्यादा तो रहता है, ज्यादा समय तो रहता है, किंतु जैसे इहलोक का लाभ समाप्त हो जाता है वैसे ही परलोक का लाभ भी समाप्त हो जाता है। अनुभव से और वेद प्रमाण से जब हमारे मन में ये निश्चय हो जाएगा कि तद्यथेह कर्म चितो लोक क्षीयते एवमेवा मूत्र पुण्य चितो लोक क्षीयते, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति और प्रत्यक्ष यत् कृतकम तद अनित्यम, तो ये श्रुति स्मृति और न्याय तीनों से जब हम लोग ये निश्चय कर लेंगे कि पारलौकिक लाभ भी शाश्वत नहीं है, तो हम चाहते हैं कि हम लाभ वो लाभ ले जो कभी समाप्त न हो पावे। हमारे मन में ये जिज्ञासा है ही, हम सब लोग ये चाहते हैं कि जो हमें मिले वो कभी समाप्त न हो। ऐसा लाभ है तो वो भी वेद ने ही बताया कि हाँ वो भी है, वो है ब्रह्म लाभ, जिसको मोक्ष कहते हैं। ब्रह्म का लाभ ऐसा है कि जो कभी समाप्त नहीं होता है, यह लौकिक लाभ समाप्त हो जाता है, क्षणभंगुर है, प्रत्यक्ष देखते हैं, इससे एक कदम आगे पारलौकिक लाभ है, वो इससे अधिक समय तक रहता तो है किंतु ये भी शाश्वत नहीं है, समाप्त हो जाता है। तो हम मनुष्य लोक में ही इहलोक और परलोक के लाभ की अनदेखी करके ब्रह्म का लाभ हम मनुष्य लोक में ही ले सकते हैं। ब्रह्म लाभ मनुष्य लोक में ही लिया जा सकता है और इसलिए मनुष्य को यही प्रयत्न करना है। जब जैसे मैंने कहा उस प्रकार से निश्चय हो गया, विवेक हो गया निष्काम कर्म करने के फल स्वरूप, विवेक के कारण फिर जब पता चला कि इहलोक और परलोक दोनों का लाभ शाश्वत नहीं है, तब उससे वैराग्य हुआ। ब्रह्म लाभ की मन में अत्यंत उत्कट दृढ़ जिज्ञासा होने पर शमदमादि षट संपत्ति का जब उदय हो गया और उसके बाद एकमात्र मुमुक्षुत्व भाव ही रहेगा और कहीं भी ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि चारों ओर घुमा घुमा करके देख लिया है, अनुभव किया है प्रत्यक्ष और श्रुति के और आचार्यों के कथन से, ये निश्चय कर लिया कि मोक्ष से ज्यादा इस संसार में कोई लाभ नहीं है, ये पा लिया। इसलिए अब मोक्ष से अतिरिक्त और जो भी लाभ है वो सब क्षणभंगुर है, इसलिए मोक्ष की ओर ही मनुष्य को अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अब वो मोक्ष कैसे हो, उसके लिए हमारे शास्त्र में साधन बताया, ब्रह्म और आत्मा की एकता का ज्ञान, ब्रह्मात्मेकत्व ज्ञान। मुमुक्षु के लिए मोक्ष का जो साधन है वो यही है, ब्रह्मात्मेकत्व ज्ञान। अब वो ब्रह्मात्मेकत्व ज्ञान कैसे हो, क्या इस समय हम लोगों को नहीं है? नहीं है। कैसे कहे कि नहीं है? बस यही बंधे हुए हैं, देह धारण किए हुए हैं, यही प्रमाण है कि ब्रह्मात्मेकत्व ज्ञान नहीं है। यदि होता तो देह धारण नहीं होता। अब देह धारण किए हुए है, ब्रह्मात्मिकत्व लाभ लेना है तो शास्त्र का विचार करना है, शास्त्र ही प्रमाण है। ब्रह्मात्मिकत्व ज्ञान की अवगति की सिद्धि के लिए प्रस्थान त्रयी का विचार अति आवश्यक है। प्रस्थान त्रयी जानते हैं, श्रौत स्मार्त और सूत्र प्रस्थान, उसमें जो श्रुति प्रस्थान है उसका सूत्र के माध्यम से विचार, सूत्र यानी ब्रह्म सूत्र का सूत्र के माध्यम से विचार और तब जाकर के आप ब्रह्म लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। अब यदि जो श्रुति है इसको उपनिषद कहते हैं, वो निरपेक्ष रवह है, वो परम प्रमाण है। वो श्रुति का अर्थ है निरपेक्ष रवह, ऐसा रवह यानी शब्द कि जो अपनी बात कहने में किसी की भी आवश्यकता न रखता हो। लोक में ऐसा देखा जाता है कि अपनी बात कहनी है तो किसी साथी की आवश्यकता रहती है, बल की जरूरत रहती है कि मैं जो कहता हूं वो ठीक है, सही है। किंतु उपनिषद जो सिद्धांत है श्रुति का जो सिद्धांत है उसको अपनी बात जताने के लिए कोई शपथ की सौगंध की आवश्यकता नहीं है, अन्य प्रमाणांतर की आवश्यकता नहीं है। जो स्वतः प्रमाण है ऐसे उपनिषद ही ब्रह्म तत्व का स्वरूप बताते हैं। तो उपनिषदों में जिस प्रकार से ब्रह्म का स्वरूप बताया है वो ब्रह्म का ज्ञान हो तब जाकर के मुमुक्षु मुक्त हो सकता है। तो उपनिषद में ब्रह्म तत्व का निश्चय करने के लिए, एकत्व का निश्चय करने के लिए चार महावाक्य है, जो ब्रह्मात्मिकत्व का ज्ञान करता है। और चारों महावाक्यों में प्रथम महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म। जो ऋग्वेद के ऐतरेय आरण्यक या ऐतरेय उपनिषद में और आत्मबोध उपनिषद में पाया जाता है।